परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री गौरताई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री जहनो सप्तमी महामहोत्सव की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द सेंट डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सेंट डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सेंट डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। तो आज हम तीन त्योहारों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से तीन त्योहार हैं? कौन बताएगा? पहला क्या है? जहनु सप्तमी। जहनु सप्तमी ये त्योहार आप लोग कितने लोगों के पास वैष्णव कैलेंडर है? हाथ उठाइए। तो बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं इस हरे कृष्ण आंदोलन से। वैष्णव कैलेंडर नहीं रखते। आज विशेष दिन है, पता होना चाहिए। ये आपकी चिंता होनी चाहिए कि आपको जानना है। आपकी चिंता होनी चाहिए, आपकी भूख होना चाहिए जानने की कि आज कुछ विशेष दिन है, है ना? जैसे बहुत से दिन होते हैं, बहुत विशेष होते हैं, तो उनके बारे में कम से कम नाम तो पता हो। हरि बोल माता जी। आपस में बात नहीं तो वैष्णव कैलेंडर अपने पास होना चाहिए, देखना चाहिए आज क्या है। तो ये एक दिन का त्यौहार है, जहनु सप्तमी आज आज ही है। सप्तमी समझ रहे हैं? सप्तमी तिथि है, है? बैसाख शुक्ला सप्तमी है। तो ये साल में एक दिन आती है तिथि, इसको हमें जानना चाहिए। बहुत ही विशेष दिन है आज का। और दूसरा त्यौहार क्या है? चंदन यात्रा। चंदन यात्रा एक दिन का है या कई दिन का है? 21 दिन का है। कब से शुरू हुआ? अक्षय तृतीया। कौन सी तारीख थी? 21 तारीख। इस बार 21 तारीख से अक्षय तृतीया शुरू हुई, तो 21 तारीख से चंदन यात्रा शुरू हुई 21 दिन के लिए। याद करने के लिए अच्छा अच्छी संख्या है ना। 21 तारीख से चंदन यात्रा शुरू हुई और 21 दिन के लिए है, यानी 12 मई तक चलेगी। आप गिनेंगे 21 दिन तो 12 मई तक चलेगा। 12 मई तक ये चंदन यात्रा चलेगी। और कौन सा त्यौहार है? हाँ, श्री तुलसी शालिग्राम जलदान, है ना? ये एक दिन का है या कई दिन का है? एक महीने का है। कब से शुरू हुआ? 15 अप्रैल से शुरू हुआ, 14 मई तक चलेगा तुलसी शालिग्राम जलदान, है ना? तो आज हमने जो है विचार किया कि इन तीनों त्योहारों के बारे में बोलेंगे। सबसे पहले जहनु सप्तमी के बारे में हम सुनेंगे कि ये घटना वास्तव में क्या है। जहनु, ये जो शब्द है ये एक मुनि का है। एक मुनि है, जहनु नाम के एक मुनि, है ना? इनके नाम से जो नवद्वीप में से जो नौ द्वीप हैं उनमें से एक द्वीप का नाम है जहनु द्वीप, है ना? जहाँ की वे तपस्या करते थे, है ना? ये नवद्वीप अभी तो जो है बसा हुआ है और शहर बना हुआ है, लेकिन पहले शहर नहीं था। पहले क्या था? वन था। और ये राजा जहनु नाम के जो राजा थे ये यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, है ना? तो आज के दिन गंगा जी यहाँ से गुजर रही थी, मतलब पहली बार। अब तो गंगा जी का रास्ता बन गया है, है ना? लेकिन जिस समय भगीरथ, राजा भगीरथ सबसे पहली बार गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया था। भगीरथ ने बहुत प्रयास किया था, इसलिए कोई बहुत बड़ा आप प्रयास करके कोई कार्य में सफल होते हैं तो कहते हैं भगीरथ प्रयास किया, भगीरथ प्रयास है ना। तो गंगा जी को लाने के लिए भगीरथ ने जो प्रयास किया वो भगीरथ प्रयास के नाम से प्रसिद्ध हो गया कि बहुत बड़ा प्रयास किया। क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि का अपराध करने के कारण उनका शरीर भस्म हो गया था। 60,000 पुत्र सगर के कपिल मुनि का अपराध करने के कारण भस्म बन गए, भस्म की ढेरी बन गए, 60,000 ढेरियां बन गए और नरक की प्राप्ति की उन्होंने, नरक में गए है ना। राजा सगर के 60,000 पुत्र। राजा सगर अयोध्या के राजा थे भगवान राम के काफी पहले। तो राजा सगर की दूसरी पत्नी से जो असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था तो वो जंगल में चला गया, क्योंकि पिछले जन्म के वो योगी थे तो वो उन्होंने राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। लेकिन उनका जो पुत्र था अंशुमान तो वो राज्य का उत्तराधिकारी बना और राजा सगर ने उसको भेजा कि तुम अश्वमेध के घोड़े का भी पता लगाओ और 60,000 अपने चाचाओं का भी पता लगाओ। तो अंशुमान जो है जब गए तो अश्वमेध का घोड़ा भी मिला कपिल मुनि के आश्रम में और 60,000 उनके जो चाचा थे उनकी क्या मिली, भस्म की ढेरी मिली, भस्म बन चुकी, भस्म की ढेरी बन चुकी। और कपिल भगवान को जो है उन्होंने नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से घोड़ा लिया और कपिल भगवान ने उनको आज्ञा दी कि अब तुम इनका उद्धार करने के लिए गंगा जी को लाने का प्रयास करो। तो अंशुमान ने जो है घोड़ा ला करके अपने बाबा को वापस किया, सगर महाराज को, और यशोमिया के पूरा किया और फिर वो राजा बने, अंशुमान राजा बने, अयोध्या के राजा बने। और गंगा जी को लाने में वे सफल नहीं हुए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप तो वो भी गंगा जी को नहीं ला सके पृथ्वी पर। और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ तो भगीरथ ने जो है फिर विशेष तपस्या की, गंगा जी को प्रसन्न किया और गंगा जी जब प्रसन्न हुई तो वो आने के लिए तैयार हुई। लेकिन उन्होंने अपनी समस्या बताई कि मैं स्वर्ग से सीधे अगर पृथ्वी पर आऊँगी तो पृथ्वी में मैं बह नहीं सकती, क्योंकि मेरा वेग इतना तीव्र है कि जैसे जमीन में मेरा वेग गिरेगा तो पृथ्वी को फोड़ करके मैं पाताल चली जाऊंगी है ना। तो शिव जी को फिर प्रसन्न किया, शिव जी ने अपने जटाओं में उनको रोक करके उनके वेग को नियंत्रित किया, तब गंगा जी इस पृथ्वी पर बही है ना। तो शिव जी की जटाओं से निकल करके जब गंगा जी बही तो भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चल रही थी। गंगा जी कह रही थी कि तुम्हारे 60,000 चाचा जहाँ भी हैं बताओ मुझे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ तो मुझे रास्ता दिखाओ। तो भगीरथ जो है, भगीरथ का रथ आगे आगे जा रहा था और गंगा जी पीछे पीछे चले जा रही थी। ये पहली घटना है कि जब गंगा जी आई पृथ्वी पर, जब गंगा जी उस समय पृथ्वी पर नहीं थी है ना। और राजा भगीरथ इसी रास्ते से गए नवद्वीप से होकर के, कहाँ पर गए, गंगा सागर, जहाँ समुद्र से मिलती है गंगा, वहीं पर ही कपिल मुनि का आश्रम था और वहीं पर ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म बने हुए थे। तो जब इस रास्ते से गुजरी जहनु द्वीप से तो जहनु मुनि तपस्या कर रहे थे, जहनु मुनि तपस्या कर रहे थे और गंगा जी वहाँ से निकली तो गंगा जी ने जो है कोई चिंता नहीं की कि कोई ऋषि है मुनि है, आश्रम को ही बहा दिया। तो मुनि को बड़ा क्रोध आया कि देखो मैं यहाँ पहले से आश्रम में बैठा हुआ हूँ, तो ये जो है नदी इधर से निकल सकती थी, उधर से निकल सकती थी, सीधे निकली, क्यों निकली सीधे, मेरे आश्रम को जो है छोड़ करके आगे से पीछे से कहीं से निकल जाती तो मेरे आश्रम को क्यों बहा दिया। तो उन्होंने क्रोध करके क्या किया, चुल्लू में जो है गंगा जी को लेकर के पी गए। आप सोचिए ऐसी भी घटना है, कि गंगा जी को जो है एक, मतलब उसको कहते हैं एक घूंट में गंगा जी को पी लिया उन्होंने। ये क्या संभव है, हम लोग सोच नहीं सकते। लेकिन हाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कृष्ण के चरणों की जिन्होंने शरण ली है उनके लिए ये समुद्र, ये जो भव सागर है, ये कैसा बन जाता है? गाय के खुर के गड्ढे के बराबर बन जाता है। तो गाय के खुर के गड्ढे में कितना पानी होता है? एक घूंटी तो होगा पानी। तो समुद्र जो है, भव समुद्र गाय के खुर के गड्ढे से बने जल के बराबर हो जाता है ना। तो गंगा जी भी जो है, गंगा जी का पानी भी अगर समुद्र के बराबर है तो उन्होंने उसको घूंट बना करके पी लिया, तो क्या आश्चर्य की बात है? भगवान के भक्तों के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जब भगीरथ ने देखा कि गंगा माता नहीं आ रही हैं और देखा कि ऋषि जो है बैठे हुए हैं, तो समझ गए कि ऋषि का अपराध हो गया। तो भगीरथ ने फिर ऋषि को तपस्या की। देखो भगीरथ के रास्ते में कितनी बाधाएं आई। गंगा जी को प्रसन्न किया, फिर एक समस्या आए, गंगा जी कैसे बहेंगी? तो फिर शिव जी को प्रसन्न किया। अब शिव जी को प्रसन्न करके अब गंगा जी बह करके आ रही हैं, तो यहाँ पर तीसरी बाधा आ गई। तो उनको प्रसन्न किया, जब उनको प्रसन्न किया जहनु मुनि को, तो उन्होंने गंगा जी को अपने दाहिने कान से निकाला है। तो इसलिए जहनु के नाम से गंगा जी का नाम पड़ा जाह्नवी, यानी जहनु की पुत्री, जहनु की पुत्री बनी। गंगा जी जो है जब भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुई तो विष्णुपति कहलाती हैं, लेकिन इस पृथ्वी में आकर के उन्होंने किसी को अपना पिता स्वीकार किया, और वो कौन है? जहनु मुनि। जहनु मुनि को पिता स्वीकार किया, तो जहनु मुनि पी गए, फिर गंगा जी को दाहिने कान से निकाला, इसलिए जाह्नवी कहलाती हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं? स्रोत सामथ्री जाह्नवी, कि नदियों में मैं जाह्नवी हूँ। तो जाह्नवी नाम, जहनु मुनि की कन्या जाह्नवी कहलाती हैं। आगे चल करके इन्हीं गंगा जी ने किसी को अपना पति भी बनाया। जानते किसको पति बनाया? अपना राजा शांतनु को पति बनाया। वे भी चंद्रवंश के राजा थे, वे भी चंद्रवंश के राजा हैं जहनु मुनि भी, उनको पति बनाया और पुत्र को भी उत्पन्न किया। पुत्र कौन है उनके? भीष्मदेव है ना। तो गंगा जी के पिता और गंगा जी के पति और गंगा जी के पुत्र, आपको पता होना चाहिए इस पृथ्वी में कोई है। गंगा जी के पिता कौन है? जहनु। और गंगा जी के पति कौन है? शांतनु। गंगा जी के पुत्र कौन है? भीष्मदेव है ना। तो इस तरह से गंगा जी ने जो है ये गंगा जी का इतिहास है। ये जहनु जो राजा हैं, तो इनका जो इतिहास है वो हमें पता होना चाहिए। ब्रह्मा जी के बाद दसवीं पीढ़ी के राजा हैं ये, आप समझ रहे? ब्रह्मा जी के बाद दसवीं पीढ़ी के राजा हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य परंपरा में दसवीं पीढ़ी में प्रभुपाद आते हैं। प्रभुपाद ने जो है, प्रभुपाद ने ये हरिनाम की गंगा बहाई, तो प्रभुपाद ने जो है ये बहुत बड़ा कार्य किया। चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा में दसवीं आचार्य हैं प्रभुपाद। उसी प्रकार से जहनु मुनि भी ब्रह्मा जी की पुत्र परंपरा में, ये पुत्र परंपरा है, पुत्र परंपरा में दसवें राजा हैं जिन्होंने गंगा जी को बहाया, गंगा जी बहाया है ना। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि, ब्रह्मा जी के नेत्रों से उत्पन्न हुए। अनसुईया उनकी पत्नी है, उनसे चंद्रमा का जन्म हुआ। अत्रि मुनि से चंद्रमा का जन्म हुआ, चंद्रमा से बुध का जन्म हुआ, और बुध से पुरुरमा नाम के राजा हुए, और उनके पुत्र हुए, छह पुत्र हुए, आयु श्रुतायु सत्यायु रय विजय जय। उनमें से जो पांचवें नंबर के पुत्र थे विजय, उनके पुत्र हुए भीम, भीम के कांचन, कांचन के होत्रक, होत्रक के जहनु। इस प्रकार से दसवीं परंपरा में ये हैं। तो इसमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में अध्याय 15 में यह आता है कि भीमस्तु विजिष्यात है कांचनो होत्रकस्ततः तस्य जहनु सुतो गंगाम गंडोस्ति कृत्यो पिबत, कि भीम के पुत्र हुए विजय के पुत्र हुए भीम, और भीम के पुत्र हुए कांचन, कांचन के पुत्र होत्रक, होत्रक के पुत्र हुए जहनु, जिन्होंने एक घूंट में गंगा का सारा जल पी लिया था, है ना। तो इस तरह से हमें ये कुछ विवरण प्राप्त होता है जहनु, जहनु मुनि के बारे में। तो आज जहनु सप्तमी है, तो एक बहुत बड़ी घटना आज के दिन हुई थी, है जिस पर हमें विचार करना चाहिए, है ना। आज के दिन
गंगा पान किया था,
आज के दिन गंगा जी को उन्होंने पिया और फिर गंगा जी को उत्पन्न किया, है ना। तो जहनु सप्तमी आज की ये घटना है, है? और कहाँ पर हुई थी ये घटना? नवद्वीप में हुई थी। नवद्वीप में कौन से द्वीप में? जहनु द्वीप। जहनु द्वीप जो है, ये नौ द्वीप, अलग अलग जो नौ द्वीप हैं, ये भक्ति, नौधा भक्ति के अलग अलग द्वीप हैं। तो जहनु द्वीप ये वंदना भक्ति का है, वंदना भक्ति, वंदना भक्ति। तो जहनु मुनि ने भी जब गंगा जी को पी लिया तो भगीरथ ने उनकी वंदना की, प्रार्थना की, तो वैसे भी वंदना भक्ति है, है ना। तो कोई काम जो है, मतलब अगर करना है तो कई बार जो है केवल वंदना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ही काम होता है, नहीं तो वैसे काम नहीं होगा, है। तो भगीरथ ने जो है बहुत विनयपूर्वक जहनु मुनि से प्रार्थना की कि आप कृपा करके गंगा जी को निकालिए, है ना। तो आज के दिन ये घटना हुई थी, श्री जहनु सप्तमी महामहोत्सव की। तुलसी शालिग्राम जलदान, ये जो समय चल रहा है, तो इसमें हमने पहले भी चर्चा की थी कि शालिग्राम जो है भगवान चूंकि पाषाण के रूप में है, उनका शरीर किस चीज़ का है? पृथ्वी तत्व का बना हुआ है, है ना। पाषाण पत्थर का शरीर है भगवान का। तो इस शरीर में भगवान को इस महीने विशेष गर्मी लगती है। सबका अलग अलग शरीर होता है ना, तो उसके शरीर के अनुसार किसी को जो है सुख दुख का अनुभव होता है। तो भगवान का जो शरीर है ये अलग ही शरीर है, हमारे शरीर जैसा नहीं है। हमारे शरीर में तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व का मिश्रण है, लेकिन शालिग्राम भगवान का जो शरीर है उसमें एक ही तत्व है, क्या? पृथ्वी तत्व है, है ना। तो उनके शरीर में जो है गर्मी, ये महीना जो पहला महीना होता है सौर वर्ष का, मेष संक्रांति से जो शुरू होता है, है ना, तो वो पहला महीना जो वर्ष का होता है, तो उसमें उनको गर्मी लगती है। तो उनकी गर्मी को दूर करने के लिए व्यवस्था की जाती है कि एक एक बूंद पानी शालिग्राम के ऊपर गिराया जाए, उससे उनको ठंडक लगती है। तो ये बड़ा सरल तरीका है एसी का, एसी बनाने का। और फिर शालिग्राम का वो जो पानी है ये तुलसी महारानी को प्राप्त होता है, तो तुलसी महारानी भी प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से ये विधि है। तो जिनके पास शालिग्राम शिला है उनको ऐसा करना चाहिए, सवेरे 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक ये व्यवस्था करनी चाहिए कि पानी गिराया जाए, एक एक बूंद पानी गिराया जाए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी के महात्म्य की बहुत बातें हैं और शालिग्राम के महात्म्य की भी बहुत सी बातें हैं, तो मैं कुछ पढ़ के सुनाऊँगा आप लोगों को। भगवान ने जो है तुलसी देवी को जब वरदान दिया, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे जो केस हैं ये पवित्र वृक्ष होंगे। तुलसी शंखचूड़ की पत्नी थी, तो भगवान ने तुलसी का सतीत्व नष्ट किया था, तो उस उपलक्ष में भगवान ने फिर उसको वरदान दिया। तो भगवान ने क्या वरदान दिया कि तुम्हारे केस ही पवित्र वृक्ष होंगे, तुम्हारे केस से उत्पन्न होने के कारण तुलसी नाम से ही उन वृक्षों की भी प्रसिद्धि होगी। तुम्हारा नाम तुलसी है और तुम्हारे केसों से उत्पन्न होने के कारण वे वृक्ष भी तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तीनों लोकों में पूजा के काम आने वाले जितने भी पत्र और पुष्प हैं उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी पूजा। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, पाताल और वैकुंठ लोक सर्वत्र तुम मेरे निकट रहोगी, भगवान कहते हैं। तुलसी के वृक्ष सब पुष्पों में श्रेष्ठ, भगवान ने वरदान दिया, तुलसी के वृक्ष सब पुष्पों में श्रेष्ठ होंगे। अब कितने पुष्प हैं और कितने सुंदर हैं और कितनी सुगंधी है। लेकिन भगवान तुलसी को ही सबसे आदर देते हैं। गोलोक में, बिरजा नदी के तट में, रास मंडल में, वृंदावन में, भूलोक में, भांडीर वन में, चंपक वन में, चंदन वन में, माधवी वन, केतकी वन, कुंद वन, मल्लिका वन, सभी स्थानों में तुम्हारे वृक्ष उत्पन्न होंगे और रहेंगे। तुलसी वृक्ष के नीचे स्थान परम पवित्र होंगे, अतः वहां संपूर्ण तीर्थों और समस्त देवताओं का वास होगा। भगवान वरदान दे रहे हैं तुलसी को, है ना। देवी ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, इसी उद्देश्य से वे सब वहीं पर रहेंगे। कहां पर रहेंगे? तुलसी वृक्ष के नीचे रहेंगे। कौन? सब तीर्थ, सब देवता है कि तुलसी के पत्ते गिरे। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का और समस्त यज्ञों को करने का फल प्राप्त हो गया। हजारों घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती। क्या समझे? हजारों घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। हरि बोल। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, कितना? 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है वो फल तुलसी पत्र के एक दान से प्राप्त हो जाता है। जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वो संपूर्ण पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। अरे वो जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वही जीवन मुक्त है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है वो 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। हरि वो जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में लेकर और शरीर पर रखकर प्राण त्यागता है वो विष्णु लोक में चला जाता है। हरि वो तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। कहीं भी चलो एक एक कदम रखोगे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। हरि बोल। आप कहीं भी जाते हैं एक एक कदम रखते हैं तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है इसको गले में धारण करके। इस तरह से तुलसी का जो है महात्म्य काफी है। मैंने आपको कुछ बातें सुनाई है तुलसी के विषय में। फिर भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण बनकर रहूंगा। तुलसी ने साप दिया भगवान को और भगवान तुलसी को वरदान देते हैं और कहते तुम्हारा साप भी मैं स्वीकार करता हूं, तुमको वरदान भी देता हूं। साप को स्वीकार करने के लिए मैं भारत में पाषाण यानी शालग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चिन्ह बनाएंगे। गंडकी नदी में रहने वाले जो कीड़े हैं ये सब भगवान के कारीगर हैं जो अलग अलग प्रकार की शिलाएं बनाते हैं। सालग्राम शिलाएं जो है अनेक प्रकार की होती ना, लक्ष्मी नारायण शिला होती है, दामोदर शिला होती है, नरसिंह शिला होती है, जनार्दन शिला होती है ना, लक्ष्मण शिला, राम शिला, वामन शिला, वराह शिला, कितने प्रकार की शिलाएं, तो उनके विशेष चिन्ह होते हैं। और वो भगवान के जो कारीगर हैं वो पानी के अंदर रह के कीड़े वे जो अपने दांतों से काट काट करके वो चिन्ह तैयार करते हैं, उन चिन्हों से पता चलता है कि ये कौन सी शिला है शालिग्राम की। तो भगवान ने जो है बहुत विस्तार से इस विषय में बताया शालिग्राम शिला के बारे में। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की है तुलसी और शालिग्राम के विषय में। प्रश्न है? अभी मैंने पढ़ा ब्रह्म विवर्त पुराण से। हाँ प्रश्न पूछो।
हाँ
इन शिलाओं की पहचान शास्त्रों में है, शास्त्रों में इन शिलाओं की पहचान है, उसमें बताया गया है। वो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। एक चक्र का चिन्ह हो या कुछ जो है इसमें कुछ और कई प्रकार के चिन्ह होते हैं, तो उनसे जो है नरसिंह शिला, जनार्दन शिला, बामन शिला, इनकी पहचान होती है। नहीं, निशान तो होते हैं, कुछ ना कुछ निशान होते हैं, चाहे थोड़ा निशान हो, कुछ बिंदु हो, कुछ हो, होता है, कुछ बताया गया इस तरह से। तो हर शिला का कुछ ना कुछ निशान बताया गया। और प्राप्त करने का तरीका, प्राप्त होते हैं भगवान अपनी इच्छा से प्राप्त होते हैं, और कुछ लोग प्राप्त करने के लिए जाते भी हैं और प्राप्त करके आते हैं और सेवा कर सकते हैं। वैसे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब गए थे वहाँ तो उनके हाथ में 12 सालग्राम शिला आ गई थी, लेकिन वे उस जल में उन्होंने वापस डाल दी थी कि मैं तो योग्य नहीं हूँ सेवा करने के, तो उन्होंने जल में डाल दी थी। लेकिन हर बार पानी लेते थे तो 12 सालग्राम शिला उनके हाथ में आ रही थी, फिर वो लेके आए तो उन्होंने जो है फिर सेवा की। उनमें से जो दामोदर शिला थी उसमें से राधा रमन जी प्रकट हुए थे, है ना। तो ये सब बताया गया है, विधि बताई गई है सालग्राम शिला के विषय में, और उसमें संख्या ही बताई गई कि कितनी संख्या में सालग्राम शिला रखना चाहिए, कितनी संख्या में नहीं रखना चाहिए, ये सब बातें बताई गई हैं। अच्छा, अब जो तीसरा जो विषय है हमारा वो क्या है?
चंदन यात्रा। लेकिन इसमें एक चीज़ और क्लियर नहीं हुई कि जैसे अगर हमें सालग्राम शिला रखनी है, सेवा करनी है, तो क्या हमें किसी से आज्ञा लेनी चाहिए, फिर सेवा करनी चाहिए, या हम अपने आप ला कर की सेवा कर सकते हैं?
ऐसा है कि सालग्राम शिला वैसे सामान्यतः जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ली है उन, तो जैसे अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता होती है, तो ब्राह्मण दीक्षा जिनको प्राप्त हुई है वो सालग्राम शिला भी रख सकते हैं। सामान्य सिद्धांत तो यही है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो चंदन यात्रा की हम चर्चा करने वाले हैं, वो चंदन यात्रा की जो कथा है वो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत विस्तृत है। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं उस कथा को, माधवेंद्रपुरी की कथा को? बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस बार किसी ने कथा सुनाई नहीं, वो माधवेंद्रपुरी की नहीं सुनाई पिछले साल? अच्छा, सुनाई थी लेकिन आए नहीं थे लोग। हाँ, सुनाई थी तो मैंने, इसीलिए मैंने आज जो है कुछ दूसरी बातें बताने का विचार किया कि ये कथा तो सुनाई जा चुकी है, इसलिए मैंने जो है विचार किया कुछ और बातें बताने का। सालग्राम, क्षमा करना, जो चंदन यात्रा है ये माधवेंद्रपुरी से जुड़ी हुई है। माधवेंद्रपुरी हमारे गुरु परंपरा के एक बहुत बड़े आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी, है ना। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी, है ना। तो माधवेंद्रपुरी के कारण ये चंदन यात्रा शुरू हुई। और ये चंदन यात्रा माधवेंद्रपुरी ने क्यों शुरू की, उसके कारण कौन है? एक गोपाल अर्चा विग्रह है, गोपाल जी का अर्चा विग्रह माधवेंद्रपुरी को प्राप्त हुआ था। माधवेंद्रपुरी को एक गोपाल जी का अर्चा विग्रह प्राप्त हुआ था, कहाँ पर? गोवर्धन में। जब माधवेंद्रपुरी गोवर्धन में आए थे वृंदावन में, तो पूरा का पूरा जो वृंदावन था उस समय क्या था, पूरा उजड़ा था, मतलब घोर जंगल। इस समय जैसा दिखाई पड़ता है ऐसा कुछ भी नहीं था, ना सड़कें थी, ना मकान थे, ना मंदिर थे। मुसलमानों ने मंदिर सब तुड़वा दिए थे, और जो अर्चा विग्रह थे मंदिरों के वो पुजारियों ने यहाँ वहाँ छिपा दिए थे, और फिर उनका भी शरीर छूट गया, उन पुजारियों का भी शरीर छूट गया, तो फिर किसी को फिर पता ही नहीं चला कि कौन से अर्चा विग्रह कहाँ पर हैं, है ना। तो माधवेंद्रपुरी को ही सबसे पहले अर्चा विग्रह मिला। और कैसे मिला? अर्चा विग्रह ने स्वयं ही अपना पता बताया कि मैं हूं, यहां पर मुझे निकालो यहां से। आगे चलकर के और भी अर्चा विग्रहों ने अपने अपने संकेत दिए और फिर उनको निकाला गया। तो फिर मंदिरों की स्थापना हुई। सबसे पहले माधवेंद्रपुरी को ही एक अर्चा विग्रह ने अपना संकेत दिया था और उन्होंने अपना नाम भी बताया था कि मेरा नाम गोपाल है। तो वे गोपाल अर्चा विग्रह हैं माधवेंद्रपुरी के, है ना। तो वे गोपाल अर्चा विग्रह माधवेंद्रपुरी को सपना देते हैं कि मैं यहाँ पर दबा पड़ा हूँ और यहाँ से जो है तुम मुझे निकालो। लेकिन जो स्थान उन्होंने बताया था कि मैं इस स्थान में हूँ, उस स्थान में कोई मनुष्य जा नहीं सकता। तो गोपाल जी ने फिर कैसे बताया कि मैं इस स्थान में हूँ? माधवेंद्रपुरी जब रात भर भजन करते रहे और थोड़ी देर के लिए जब उनको तंद्रा आई, तंद्रा बोलते हैं जब बैठे बैठे नींद आती है ना, तो निद्रा नहीं कहलाती वो, क्योंकि आप सो नहीं सकते, है ना, तो तंद्रा कहते हैं। तो तंद्रा आई, तो तंद्रा में उन्होंने सपना दिया गोपाल जी ने, और माधवेंद्रपुरी के हाथ पकड़ करके ले गए उस स्थान में। तो स्वप्न के शरीर से माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी उस स्थान में ले गए, क्योंकि वो जो स्थान था वो एक ऐसा कुंज था जहाँ की कटीली झाड़ियाँ थी, तो वहाँ पर वो जो है पड़े हुए थे गोपाल अर्चा विग्रह, और कोई मनुष्य जा नहीं सकता जब तक कि कुल्हाड़ी और कुदाल से जो है और काट काट करके रास्ता ना बनाया जाए। तो माधवेंद्रपुरी को स्वप्न के शरीर से हाथ पकड़ करके गोपाल ले गए और बोले कि मैं इस स्थान में पड़ा हुआ हूँ और मुझको वर्षा आंधी और गर्मी का बड़ा कष्ट हो रहा है, तो मुझे यहाँ से निकालो और मुझे गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित करो और मेरा मंदिर बनाओ। तो सबसे पहला जो मंदिर बना था और अर्चा विग्रह का जो पता चला था वो यही है, माधवेंद्रपुरी के गोपाल जी हैं, है ना। तो इस लीला, ये जो लीला है इसका संकेत हमारे साथ भी हुआ, तो ये मैं आपको जो है इस पुस्तिका से पढ़ करके सुनाऊंगा। इसमें ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो भगवान ने हमारे साथ की हैं, तो ये आप ले सकते हैं। ये कुछ पेज हैं जो हमने छापे हैं, ये तो केवल 117 पेज की पुस्तिका है, अभी तो 1000 पेज हो चुके हैं कम से कम, ऐसी भगवान लीलाएं कर रहे हैं हमारे साथ में। तो ये आप प्रवचन के बाद में ले सकते हैं। तो इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। ये घटना 30 मई 2014 की है। किस तारीख की? 30 मई 2014 की है। आज के दिन मैंने दिल्ली के छिपीवाड़ा मंदिर में प्रवचन दिया था। प्रवचन में पहले से ही निश्चित हो गया था कि मैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अंतर्गत चौथे अध्याय में वर्णित माधवेंद्रपुरी की उस लीला को सुनाऊंगा, जिसमें गोवर्धन पर्वत में एक स्थान पर कई सौ वर्षों से दबे पड़े हुए गोपाल अर्चा विग्रह ने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि मुझे इस स्थान से निकालो, क्योंकि मुझे गर्मी, वर्षा, आंधी और जाड़े का अत्यंत कष्ट मिल रहा है। इनकी कथा इसलिए मैं आज सुना रहा हूँ कि चंदन यात्रा का कारण तो ये है, जिस अर्चा विग्रह के कारण पूरी दुनिया में चंदन यात्रा हो रही है उसी अर्चा विग्रह की बात मैं आपको जो है बता रहा हूँ, है ना। तो भगवान की ऐसी आज्ञा मिलने पर माधवेंद्रपुरी ने वहाँ के निवासी लोगों को आदेश दिया कि वे कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर उस स्थान तक जाने के लिए रास्ता बनाए जहाँ गोपाल दबे पड़े हैं। अब देखो, जहाँ गोपाल दबे पड़े हैं अन्यथा कोई नहीं जान सकता कि कहाँ पर पड़े हैं। माधवेंद्रपुरी को सपने में जो भगवान ने बताया था, तो माधवेंद्रपुरी को पता है कि वो आकाश मार्ग से भगवान ले गए थे उनको, तो माधवेंद्रपुरी को पता था कि सीधे कैसे रास्ता को काट करके बनाया जाए और सीधे उसी बिंदु पर पहुंचना है जहां गोपाल जी दबे पड़े। आप समझ रहे? स्वप्न के शरीर में माधवीपुरी ने पूरा रास्ता निश्चित कर लिया था कि किस रास्ते से कैसे काटना है रास्ता कि सीधे उसी बिंदु पर पहुंचे। आप सोचिए, तो माधवीपुरी ने जो है उस स्थान तक जाने के लिए रास्ता बनवाया वहां के निवासियों के द्वारा जहां गोपाल दबे पड़े हैं। अब आश्चर्य की बात यह हुई कि प्रवचन तो रात्रि 8 बजे से शुरू होने वाला था, समझ रहे, मुझे प्रवचन देना था इसी लीला पर, तो रात्रि की 8 बजे शुरू होने वाला था, परंतु सायं 5 बजे से अत्यंत भयानक आंधी चलने लगी। गोपाल आचार्य विग्रह ने कहा था ना कि मुझे आंधी वर्षा और गर्मी का कष्ट हो रहा है, तो वो लीला जो है मुझे सुनाना था 8 बजे रात में 8 बजे, तो शाम को 5 बजे से ही उन्होंने लीला शुरू करी। तो आंधी, भयानक आंधी चलने लगी, फिर कुछ वर्षा हुई, उन्होंने कहा था वर्षा का कष्ट हो रहा है, तो वर्षा भी हुई और इस आंधी के कारण अनेक वृक्ष गिरे दिल्ली में। ये 30 मई की घटना है, 30 मई 2014, अनेक वृक्ष गिरे जिसके कारण दिल्ली की सड़कों में गाड़ियों के आगे बढ़ने में बहुत रुकावट हुई। अब देखिए ये कितने आश्चर्य की बात है कि मैं जिस कथा का वर्णन करने वाला था वैसी घटना पहले से ही घटित हुई। कथा में गोपाल कह रहे हैं कि मुझे गर्मी आंधी और वर्षा का महान कष्ट हो रहा है, और आज कथा के पहले ऐसा ही घटित हुआ। भीषण गर्मी के दिन तो चल ही रहे थे, उन्होंने 3 प्रकार के कष्ट बताए, आंधी, गर्मी और वर्षा। तो देखो गर्मी के दिन चल ही रहे थे, 30 मई का समय तो गर्मी का होता ही है, और आंधी भी आई बहुत तेज और वर्षा भी हुई। भीषण गर्मी के दिन तो चल ही रहे हैं और आज कथा की बात को पुष्ट करने के लिए भयानक आंधी और कुछ वर्षा भी हुई। फिर कथा में वर्णन आया कि माधवेंद्रपुरी की आज्ञा से लोगों ने कुल्हाड़ी और फावड़ा से वहां की झाड़ियों को काट काट कर रास्ता बनाया, तो यही घटना हमने रास्ते में देखी। मैं जिस समय ईस्ट ऑफ कैलाश के मंदिर से छिप्पीवाड़ा मंदिर जा रहा था तो रास्ते में बहुत से वृक्षों के गिरने के कारण रास्ते में बहुत रुकावट आई, और मैं और मेरे संगियों ने देखा कि रास्ते में अनेक वृक्ष गिरे हुए हैं और उन्हें लोग काट काट कर रास्ता बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हरि बोल। देखो ये लीला जो है हमारे सामने भगवान ने की, क्योंकि मैं ये कथा सुनाने वाला हूँ तो ये लीला भगवान ने की। अच्छा फिर एक और लीला, जब गोपाल जी को जो है माधवीपुरी ने स्थापित कर दिया तो फिर तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ और बहुत लोगों ने जो है कई प्रकार के उपहार दिए गोपाल जी की, खूब है ना उनकी पूजा हुई और खूब भेंट लाए लोग। इसके अतिरिक्त एक और आश्चर्यजनक घटना हुई, उस समय कथा में ये भी वर्णन आया था कि जिस समय गोपाल की स्थापना हो गई उस समय अनेक लोगों ने गोपाल जी को अनेक प्रकार के उपहार दिए। कथा में उपहारों का विस्तृत वर्णन हुआ है कि किसने क्या क्या उपहार दिया था। अब कथा के अंत में जिस समय मैं छिप्पीवाड़ा से अपने ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर की ओर लौट रहा था उस समय रास्ते में मैंने गाड़ी में लगी हुई सीडी जिसमें मेरे अनेक प्रवचन भरे हुए थे को जैसे चालू किया उस समय सीडी में ऐसा प्रवचन प्रारंभ हुआ जिसमें इस बात का विस्तार से वर्णन आया था कि श्री कृष्ण के जन्म के समय पर किस प्रकार ब्रजवासियों ने नंद महाराज के घर में आकर अनेक प्रकार के उपहार दिए। कथा के बाद सीडी में ये प्रवचन निकला। अब सीडी में कौन सा प्रवचन निकलेगा हमें कुछ पता नहीं है ना, वो प्रवचन निकला कि कृष्ण के जन्म के समय कैसे उपहार दिए। तो ये भी तो एक कृष्ण का जन्म ही था एक प्रकार से गोपाल जी का, कि वो जो है झाड़ी में कितने 100 सालों से दबे पड़े थे आज निकले हैं तो एक नया जन्म मिला उनको। तो कृष्ण के जन्म में जैसे उपहार लोगों ने आकर के दिए ब्रजवासियों ने, तो वही जो है लीला निकली सीढ़ी के अंदर से। ये सभी आश्चर्य श्री कृष्ण की व्यवस्था से होते हैं। इन आश्चर्यों के विषय में कोई भी व्यक्ति पहले से किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता था, सब कुछ श्री कृष्ण की कृपा का ही चमत्कार है। अब एक घटना जो है ये 26 जून की है, ये 26 जून की घटना है, 26 जून 2014। तो उस दिन मैं वृंदावन गया था वृंदावन मंदिर में मैंने प्रवचन दिया था, ये बात पहले से निश्चित थी कि इस्कॉन वृंदावन में प्रवचन देने के पश्चात में मंदिर में प्रसाद ग्रहण करके गोवर्धन के गोविंद कुंड नामक स्थान में स्थित श्री माधवेंद्रपुरी के गोपाल अर्चा विग्रह का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर जाऊंगा। माधवेंद्रपुरी के गोपाल अर्चा विग्रह वहाँ पर हैं गोविंद कुंड में, तो निश्चित हो गया था मैं जाऊँगा। जिस समय मैं गाड़ी में बैठकर गोवर्धन की ओर जा रहा था, उस समय गाड़ी में बैठे हुए भक्तों को मैं इस पुस्तक में लिखी हुई उन उस घटनाओं को पढ़कर सुना रहा था जिनमें मेरे सामने श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएं की थीं। अचानक रास्ते में मुझे पढ़ना बंद करना पड़ा क्योंकि उस समय मुझे कुछ ऐसी दवाएँ ग्रहण करनी थी जिनको ग्रहण करने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। इसी बीच में मैं गोपाल अर्चन विग्रह के सामने पहुँच गया, तब तक लीलाएं पढ़ना बंद हो गया था। अभी अत्यंत आश्चर्य की बात हुई जिसके विषय में ना तो मैंने सोचा ना किसी अन्य नहीं सोचा था। जिस समय मैंने गोपाल अर्चा विग्रह के सामने उन्हीं घटनाओं को उसी क्रम में पढ़ना प्रारंभ किया जहां पर कुछ समय पहले मैंने पढ़ना बंद किया था, उस समय अचानक उस घटना का भी वर्णन आ गया जो दिनांक 30 मई 2014 को छिप्पीवाड़ा मंदिर में प्रवचन करने के पहले घटित हुई थी। जो मैंने अभी सुनाया ना, ये घटना जो है उसी समय आई। किस समय आई? जब मैं गोपाल अर्चा विग्रह के सामने आ गया। उस दिवस पर श्री कृष्ण ने मेरे साथ जो लीला की थी उसका विस्तृत वर्णन इसी पुस्तक की उक्त दिनांक में किया गया है जो मैं सुना चुका हूँ। उस प्रवचन में मैंने श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़कर सुनाया था कि श्रील माधवेंद्रपुरी से स्वप्न में गोपाल अर्चा विग्रह ने कहा कि हे पुरी, मुझे इन झाड़ियों में पड़े हुए जाड़ा, गर्मी, वर्षा और आंधी का अत्यंत कष्ट हो रहा है, अतः मुझे इस स्थान से निकालकर मंदिर में मेरी स्थापना करो। ये भी अत्यंत आश्चर्य की बात हुई कि गोपाल के अर्चा विग्रह की घटना का वर्णन उन्हीं गोपाल अर्चा विग्रह के सामने हुआ। समझ रहे हो? ऐसा तो सोचा नहीं था, है ना? उन्हीं गोपाल अर्चा विग्रह के सामने हुआ जिसके विषय में ना तो मैंने और ना ही किसी अन्य ने सोचा था। अब इससे एक बहुत बड़े संदेह का भी निवारण हुआ। सुने ध्यान से, इस समय एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है कि श्री माधवेंद्रपुरी के गोपाल अर्चा विग्रह समय वास्तव में नाथ द्वारा राजस्थान में श्री नाथ जी के नाम से पूजित हो रहे हैं अथवा वे कहीं अन्यत्र हैं। तो एक बड़ा विवाद चल रहा है और बहुत से भक्त लोग तो यही सोचते हैं कि नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी हैं वही गोपाल जी हैं, है ना? क्योंकि श्रीनाथ जी के नाम से पूजित हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि श्रीनाथ जी के अर्चा विग्रह तथा गोपाल के अर्चा विग्रह में एक बहुत बड़ी समानता यह है कि दोनों अर्चा विग्रहों का बायां हाथ गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए ऊपर उठा हुआ है दोनों का। अतः सभी लोग विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत के निवासी लोग समझते हैं कि मूल अर्चा विग्रह नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के नाम से पूजित हो रहे हैं और यहाँ गोविंद कुंड में स्थित गोपाल का अर्चा विग्रह प्रतिभू मूर्ति हो सकता है। लोग सोच रहे हैं ऐसा कि जो गोपाल जी हैं ये शायद हो सकते हैं कि प्रतिभू मूर्ति हो, परंतु जब मैंने इस मंदिर के पुजारी से पूछताछ की तो पता चला कि गोपाल जी ही मूल अर्चा विग्रह हैं। आप समझ रहे हैं? ये उनका अलग इतिहास है। नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी निकले हैं उनका अलग इतिहास है और वो कहाँ से निकले हैं? श्रृंगार, वो श्रृंगार का स्थान है कोई, तो वहाँ से निकले नाथ द्वारा, वो अलग उनका इतिहास है। तो ये तो जो है हमें पता चला जब छानबीन किया, या अभी हम लोग भी यही सोचते हैं ना, लेकिन कोई नहीं जानता है कि जिनके कारण चंदन यात्रा पूरी दुनिया में चल रही है वो यहीं गोविंद कुंड में ही हैं और वो गोपाल जी के नाम से ही हैं, है ना? जो श्रीनाथ जी हैं उनका अलग इतिहास है, उनका नामकरण शुरू से ही श्रीनाथ जी हैं और ये गोपाल जी जो गोविंद कुंड में है इनका नामकरण शुरू से ही गोपाल जी हैं, है ना? जिन्हें श्री माधवेंद्रपुरी ने मंदिर में स्थापित किया था तथा ये पुजारी माधवेंद्रपुरी की ही शिष्य परंपरा में है। जो बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि 2 साल तक माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी की पूजा की, उसके बाद फिर 2 बंगाल से वैष्णव आ गए जिनको कि माधवेंद्रपुरी ने सेवा का भार सौंपा और फिर चंदन लाने के लिए चले गए जगन्नाथपुरी, तो फिर माधवेन्द्रपुरी लौट करके नहीं आए, लेकिन तब से गोपाल जी की पूजा उसी स्थान में चल रही है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर मैंने भी यही माना कि श्रील माधवेन्द्रपुरी के गोपाल अष्टक विग्रह मूल रूप में यही हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन की घटना से भी ये बात पुष्ट हुई, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण की व्यवस्था से उस घटना का वर्णन इन्हीं गोपाल जी के सामने पढ़ा। इसी पुस्तक से मैंने पढ़ के सुनाया, इन्हीं गोपाल जी के सामने पढ़ के सुनाया, और कैसा योग बना कि जिस समय मैं यहाँ पर आ गया उस समय यही लीला निकली, इन्हीं गोपाल जी की लीला निकली। गोपाल जी ने जो है संकेत दिया ना कि मैं ही हूं वो है जिसने माधवेन्द्रपुरी को सपना दिया था कि मैं कष्ट पा रहा हूं मुझे निकालो, तो ये लीला जो है मैंने मतलब अपने तो स्वयं तो नहीं सोचा था कि ये लीला मैं सुनाऊंगा, वो क्रम से मैं सुना रहा था तो यही लीला निकली। और किस समय निकली? जब मैं इनके सामने आ गया। मैं तो गाड़ी में बैठ करके क्रम से सुना रहा था लीलाएं। क्योंकि मैंने श्री कृष्ण की व्यवस्था से उस घटना का वर्णन इन्हीं गोपाल जी के सामने पढ़ा, जिसमें गोपाल जी श्री माधवेन्द्रपुरी से कह रहे हैं कि मुझे कई प्रकार के कष्ट हो रहे हैं, अतः मेरी स्थापना मंदिर में करो। अतः ये बात पुष्ट हो गई कि श्री माधवेन्द्रपुरी के असली गोपाल अर्चक विग्रह यही हैं। अब एक घटना है 26 जून 2014 की, 7 जुलाई 2014 की घटना है। 7 जुलाई 2014 के दिन हम गोविंद कुंड गए थे, केवल इनका ही दर्शन करने गए थे। उस दिन हमारा पूरा प्रोग्राम यही था कि गोविंद कुंड में इनका ही दर्शन करना है। तो उस समय ही एक संकेत मिला। क्या संकेत मिला? कि यही हैं गोपाल जी, माधवेन्द्रपुरी के गोपाल जी यही हैं, ये संकेत मिला। गोविंद कुंड में पहुंचकर मैंने अपने हाथों से गोपाल की गायों को चपातियां खिलाने का आनंद प्राप्त किया। वहां पर 4 गौएं हैं गोपाल जी की। इसके पश्चात मैंने देखा कि गोविंद कुंड के निवासियों में ये भ्रांति फैली है कि श्रील माधवेन्द्रपुरी ने जिन गोपाल जी की मंदिर में स्थापना की थी वे समय नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के नाम से पूजित हो रहे हैं। वहां के लोग भी यही मान रहे हैं। यद्यपि गोपाल अर्चक विग्रह के पुजारी गोविंद दास स्पष्ट कह रहे थे कि श्रील माधवेन्द्रपुरी के गोपाल अर्चक विग्रह मूल रूप से यही हैं, जो पुजारी हैं वहां के वो तो बोल रहे हैं, लेकिन बाकी कोई नहीं मतलब ध्यान नहीं देते ना उन लोग, परंतु वहां के निवासीगण इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। इस प्रकार मेरा भी उनके साथ कुछ विवाद हुआ। अब जो ही मैं गोविंद कुंड से गाड़ी में बैठकर दिल्ली की ओर चला, उस समय गाड़ी में लगे हुए पेन ड्राइव में एक ऐसा प्रवचन निकला जिसमें मैंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 72वें अध्याय का पाठ करते हुए युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ का वर्णन किया है। उस समय पेन ड्राइव से युधिष्ठिर महाराज के शब्द मेरी आवाज में सुनाई पड़े। हे श्री कृष्ण, मैं ब्रह्मा शिव तथा स्वर्ग लोक के सभी प्रमुख देवताओं को आमंत्रित करके ब्रह्मांड के सारे भागों से आए देवताओं की उस महान सभा में ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि आप भगवान हैं और प्रत्येक व्यक्ति आपका दास है। अब यदि विचार किया जाए तो यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि गोविंद कुंड में स्थित गोपाल अर्चक विग्रह के विषय में जिस प्रकार विवाद चल रहा है कि माधवेन्द्रपुरी के मूल अर्चक विग्रह हैं अथवा नहीं, उसी प्रकार के विवाद की चर्चा पेन ड्राइव की कथा में भी निकली। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि वे सभी देवताओं तथा राजाओं की सभा में इस बात की स्थापना करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। तो पेन ड्राइव की इस कथा के द्वारा मेरे लिए एक संकेत प्राप्त हुआ कि इस विवाद को समाप्त करने के लिए मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे इस बात की स्थापना हो सके कि श्री माधवेन्द्रपुरी के मूल गोपाल अर्चक विग्रह यही हैं। श्री कृष्ण की व्यवस्था से पेन ड्राइव में ऐसी कथा निकलने के कारण मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो कुछ चर्चा मैंने मतलब ये की और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है कि चंदन यात्रा पूरी दुनिया में हो रही है ना, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी हैं उन्होंने सपना दिया था और वो माधवेन्द्रपुरी के गोपाल जी हैं। है ना। तो मेरा यही सुझाव है, है? कि माधवीपुरी की गोपाल जी वहीं पर हैं जहाँ वो निकले थे, है? और गोविंद कुंड में ही हैं, है? और उन्हीं उन्होंने ही सपना दिया था माधवीपुरी को कि मुझे निकालो यहाँ से, फिर उन्होंने ही सपना दिया था माधवीपुरी को कि मेरे लिए चंदन लाओ। ये विग्रह गोविंद कुंड के निकट हैं, वहीं पर पेड़ भी है, माधवीपुरी ने पेड़ के नीचे विश्राम किया था और गोपाल जो है एक गो बालक के रूप में दूध लेके आए थे। तो गोविंद कुंड आप पहुंचे ना, गोविंद कुंड, तो वहाँ पर जो है कुछ चबूतरा भी बना हुआ है और एक जो है घर जैसा बना हुआ है, उसके अंदर आप जाएंगे तो गोपाल जी जो है श्रीनाथ जी से छोटे हैं। श्रीनाथ जी की भी मूर्ति ऐसे ही है, मतलब गोवर्धन पर्वत उठाए हुए है ना, और गोपाल जी भी, लेकिन गोपाल जी का जो साइज है वो छोटा है श्रीनाथ जी से, तो ये वहाँ पर उनका दर्शन होता है। हाँ, तो आप लोग जाएं और वहाँ दर्शन करें। तो चंदन यात्रा के समय में मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि मूल कारण जिन्होंने मतलब चंदन मांगा था माधवीपुरी से वो कौन है, है ना। तो वो जो है वहीं पर हैं, जबकि हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं नहीं वो नाथ द्वारा में चले गए हैं, श्रीनाथ जी के नाम से हैं। तो ये जो है विवाद तो चल ही रहा है ना। लेकिन नाथ द्वारा में जो है श्रीनाथ जी जो प्रकट हुए थे वो स्वतः प्रकट हुए थे, वो अलग उसका इतिहास है, और वो श्रीनाथ जी शुरू से ही उनका नाम श्रीनाथ जी है, तो वो सब बातें जो है मतलब शास्त्रों में लिखी हुई हैं। बांके बिहारी के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता, और वो हमारी मतलब गुरु परंपरा में भी नहीं है, लेकिन ये गोपाल जी जो है माधवेंद्रपुरी के अर्चा विग्रह, जो हमारी गुरु परंपरा के अर्चा विग्रह हैं, माधवेंद्रपुरी नहीं जिनको स्थापित किया था, इसलिए मैं इनकी बात मतलब अभी कर रहा हूँ। और चूँकि चंदन यात्रा का भी समय चल रहा है, बाकी जो बांके बिहारी हैं उनकी भी बहुत देवी लीला है, लेकिन जो भी हो जैसे भी हो वो विषय नहीं हमारा। ठीक है, और कोई चर्चा किसी की ओर से, कोई प्रश्न है किसी की ओर से? हाँ माता जी। जाह्नवा पाद पद्म करिया, जाह्नवा माता ये नित्यानंद की पत्नी है, जाह्नवा माता वो जाह्नवा है, जाह्नवा देवी है ना। हाँ जी आपका पूछो। सुना नहीं पड़ा क्या? माधवेंद्रपुरी की चंदन यात्रा, ये बहुत विस्तृत कथा है और चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के चौथे अध्याय में मिलती है, ये बहुत विस्तृत कथा है। तो लेकिन मैंने आपको कुछ तो संकेत दे दिया कि इन्हीं गोपाल जी ने जो है दो साल के बाद सपना दिया कि मेरे शरीर का ताप दूर नहीं हुआ है, इसलिए ये ठंडे पानी से स्नान कराने पर मेरे शरीर का ताप दूर नहीं होगा, मेरे लिए मलय चंदन लेकर के आओ, ये काम तुम ही कर सकते हो। तो माधवेंद्रपुरी गए थे जगन्नाथपुरी और एक मन चंदन उन्होंने इकट्ठा किया था, लेकिन फिर वो चंदन लेकर के वापस नहीं आए। इन्होंने गोपाल जी ने उनको सपना दिया कि रेमुणा में जो गोपीनाथ जी हैं उनको चंदन का लेप लगा दो तो मुझे चंदन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है माधवेंद्रपुरी फिर वापस आए ही नहीं, यहाँ गोपाल जी के पास फिर वापस आए ही नहीं, और चंदन का लेप गोपीनाथ जी के शरीर में लगा दिया। इसके बाद फिर माधवेंद्रपुरी वहीं रहे या जगन्नाथपुरी रहे, मतलब इस तरह से उन्होंने अपना फिर पूरा जीवन बिताया। और कोई प्रश्न किसी का? प्रद्युम्न प्रिया हैंड माइक है, हैंड माइक चालू करो।
तो ये जो प्रभु जी ने लीला बताई थी अभी कि छिपी वाला में, आवाज आ रही है मेरी?
सबको आवाज आ रही है इनकी?
जो छिपी वाला में प्रभु जी कथा सुनाने के लिए गए थे, ये चंदन यात्रा की माधवेंद्रपुरी जी भी गोपाल चले गए, तो विशेष बात इसमें ये भी थी कि नीलकंठ प्रभु जो थे उन्होंने प्रभु जी को बोला था कि ये राधा वल्लभ हैं, वो प्रभुपाद के समय के बाद इनकी सेवा कोई कर ही नहीं रहा, ऐसे है ये, तो आप इनके बारे में बताइएगा कि लोग सेवा करें। तो उसी दिन जो कितना गर्मी का दिन था 5 मई, तो 5 बजे तक कुछ नहीं था, ठीक एकदम 5 बजे मैं स्नान कर रहा था, देखा इतनी भयंकर आंधी चलने लगी कि कितने पेड़ गिर गए। उससे भी पता लगता है जैसे कि माधवेंद्रपुरी के आचार्य विग्रह गोपाल जी ने बताया कि भाई मेरी कुछ सेवा नहीं हो रही है, मैं यहाँ कष्ट पा रहा हूँ। इसी तरह से राधा वल्लभ जी प्रभुपाद के जाने के बाद जो 40 वर्षों से कष्ट पा रहे थे, और
प्रभु जी बता रहे हैं बहुत रहस्य है। अभी तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ उस गहराई में, क्योंकि आज का जो विषय है उन्हीं का ही है कि जो चंदन यात्रा से संबंधित है, तो इन सब लीलाओं में बहुत रहस्य है। ठीक है, आपका प्रश्न है। ठीक है, इनका प्रश्न है कि तुलसी महारानी ने भगवान को श्राप दिया, इसका क्या कारण था? तुलसी महारानी ने भगवान को श्राप दिया था क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान ने धर्म का उल्लंघन किया। हालांकि भगवान के द्वारा धर्म का कभी उल्लंघन नहीं होता, लेकिन सामान्य दृष्टि से ऐसा दिखाई पड़ता है कि धर्म का उल्लंघन किया, कि भगवान ने जो है जो दूसरे की विवाहिता पत्नी का सतीत्व भंग किया, तो लगता है कि जैसे भगवान ने धर्म का उल्लंघन किया। लेकिन धर्म का उल्लंघन नहीं किया, वो तो बहुत उसमें गहरी कारण हैं जिनके कारण भगवान ने ऐसा कार्य किया था। लेकिन जब उन्होंने जो है तुलसी ने श्राप दिया, तो भगवान ने संसार में इस धर्म की स्थापना करने के लिए श्राप को स्वीकार किया कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसको ये दंड स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान ने संसार को शिक्षा देने के लिए दंड स्वीकार किया। ठीक है, आपका प्रश्न। शालिग्राम नहीं, सभी शालिग्राम है। शालिग्राम शिलाओं के ही अलग अलग निशान होते हैं, जनार्दन शिला, राम शिला, लक्ष्मण शिला, सब शालिग्राम शिला ही है सब। ठीक है, हाँ ऐसा है। कहीं पर वृंदा की कथा आती है जो जलंधर की पत्नी थी, कहीं पर शंखचूड़ की कथा थी जो तुलसी पत्नी थे शंखचूड़ की। तो ये कल्प भेद के अनुसार होता है, कल्प भेद के अनुसार है।
एक कारण तो ये था कि भगवान शिव जी को बचा रहे थे,
बहुत इसमें जो है गहराई है इस कथा में, तभी इतना समय नहीं हमारे पास में, तो कई लोग आप हैंड माइक
जो
अभी साफ नहीं आ रही है वजह, अभी हमारे पास समय भी नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, आप किसी और से प्रश्न कर लेना, अभी समाप्त कर रहे हैं हम। ठीक है, हाँ अनाउंसमेंट कर लीजिए, कुछ बोलना है।
हरे कृष्ण,
इसको रख लो। हरे बोल,
अभी ये 6वीं पुस्तक श्री भगवान ने कहा,
ये ले लो।
श्री भगवान ने कहा
जो है Part 2, ये पुस्तक जो है
हाल ही में अभी जो है लॉन्च हुई है, ये पुस्तक जो है, तो इसके साथ में ये पूरी